शुक्र के तीन दर्जे होते हैं, शुक्र बिल कल्ब, थैंक्स टू बी फ्रॉम योर हार्ट, दिल का शुक्र के अल्लाह तूने दिया, कितना तेरा शुक्र है, तू ना देता तो कहाँ से खाते। दिल आपका हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत के जज्बों से भरा हो। आज जब लंच के लिए बैठे हैं या डिनर के लिए रात को बैठे हैं तो देखें, बच्चों को एहसास दिलाएं, बेटा ये किसने दिया, ये कहाँ से आया। एक भैंस दूध देना छोड़ दे आपका सारा चीज़ और आपकी सारी डेयरी फार्म ख़त्म हो जाए, बेकरी ख़त्म, मिठाई ख़त्म, दूध ख़त्म, समझ लिए कि घर में जितनी सॉसेज हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। एक भैंस अगर अल्लाह की नाफरमानी करे, हम नाफरमानियाँ करते हैं खा पी कर। तो बहरहाल दिल में शुक्रगुजारी और ज़ुबान पे दूसरी चीज़, अल्लाह का शुक्र का दूसरा दर्जा के शुक्र बिल लिसान, ज़ुबान पे रब के गुण गाओ, मेरे रब मुझे बड़ा अच्छा खिलाता है, मेरे रब ने बड़ा प्यारा खिलाया है, वो खिलाता है, वही खिलाता है, वही पिलाता है। अपने ना गुण गाते रहो कि मैंने बड़ा अच्छा बनाया, मेरे हाथ में बड़ा टेस्ट है। हाथ टेस्ट है आपके हाथ में, अगर ज़रा सी कोई चीज़ ही अपना टेस्ट ख़त्म कर दे, आप चीनी डालें और चीनी नाफरमानी करके नमक में बदल चुकी हो, फिर देखें आपकी स्वीट डिश कैसी बनती है, आपका केक कैसा बनता है। फिर इसी तरह शुक्र का आखिरी जो ला मुहाला और अनफिनिट दर्जा है कि शुक्र बिल जवारेह। जवारेह कहते हैं लिम्स को, हाथ, कान, आंखें, दिल, दुबान, जुबान के खाने के बाद अपने जिस्म के आज़ाद से काम क्या लेते हो। जब खा के हम तो सो जाते हैं ना, 6 घंटे तक कहते हैं खाना मैदे में रहता है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, फिर वो अंतड़ियों की तरफ जाता है, तो हम तो सो जाते हैं मैदे में, वो 6 घंटे रहा मिसाल है, उसके बाद उससे जो एनर्जी मिली वो जिसे में 2-3 दिन तक उसके हमारे ब्लड में असर रहता है। अब देखो कि तुम इस मिलने वाली एनर्जी से क्या करते हो, ये करो, फिर खूब खाओ, फिर अल्लाह नहीं रोकेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, खा के अल्हम्दुलिल्लाह कहो तो तुमने शुक्र का हक अदा कर दिया। रिवायत में आता है कि जो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ ले खाने से पहले, शऊर से, ये नहीं कि रस्मी बिस्मिल्लाह, और खा के अल्हम्दुलिल्लाह के, अल्लाह कल क्या उसका हिसाब लेगा, उसने तो खुद अपना हिसाब ले लिया। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसकी इबादत करते हो, ये अबूदियत का लफ्ज फिर आ गया, थोड़े थोड़े पारों के बाद फिर आता रहेगा, आप देखेंगे इय्याका नस्ताईन और इय्याका नाबुदू से ये सबक शुरू होता है, और आप देखें कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक यही सबक है कि अगर अल्लाह के बंदे हो, नफ्स के बंदे हो जो मर्जी करो, सोसाइटी के बंदे हो जो मर्जी करो, खानदान रस्म रिवाज के बंदे हो जो मर्जी करो, माल के बंदे हो जो मर्जी करो, लेकिन याद रखो कि अगर अल्लाह के बंदे हो तो तुम्हें उसके बंदे बन के रहना पड़ेगा, फिर उसकी बात मानो, तुम्हारी जिंदगी, मईशत, मुआशरत, सियासत, तुम्हारे बच्चों के रिश्ते, तुम्हारा जीना मरना, हर चीज में अल्लाह हो। चलिए अब यहाँ पे रुक के देखिए कि क्या कह दिया, सब कुछ खाओ, बात खत्म। अब सवाल पैदा होता है क्या ना खाओ, पहले सवाल का जवाब मिल गया ना, क्या खाओ, सब कुछ खाओ। यहाँ एक मैं आपको छोटी सी कोटेशन अरबी की, उसको डायल्यूट सा करके लिखाती हूँ कि असलुल अशियाई इबाहतुन, चीज़ें अपनी असल के एतबार से हलाल है, समझ लें इस्लाम का मिजाज, सब कुछ हलाल है, असलुल असल, फ्रॉम द बेसिक एवरीथिंग इज हलाल इन दिस यूनिवर्स, इल्ला सिवाय उन चीज़ों के जिसके ऊपर कोई दलील मिल जाए। बात बात है, कोई पूछे पालक हलाल है, जी पर हलाल है, अच्छा जी पुदीना हलाल है, हलाल है, अच्छा जी वो साग हलाल है, हलाल है, बोलते जाए, आप सब बातों का एक जवाब दे दें, सब कुछ हलाल है सिवाय उस चीज़ के जिस पे ये बात कुरान या हदीस में मिल जाए कि ये ना खाओ। बात वैसे है, आप सोचे दुनिया में कितना कुछ है, बड़ा सा कोई स्टोर जेन में लाए, आयल्स की आयल भरी होती है ना, सब खाओ, क्या ना खाओ, ये अगले हिस्से में आ रहा है, इन्नमा ओनली कलमा हसर, ओनली यानी सिर्फ क्या हराम है, हर्रम अलैकुम, उसने हराम किया तुम पर, किसने किया, कौन कर सकता है हराम और हलाल, नबी कर सकता है, पीर, बुजुर्ग, वली, उस्ताद नहीं कर सकते, हराम और हलाल का इख्तियार अल्लाह के हाथ में, और इन्ना मैं ऐसे जिसके इंग्लिश में आप कहते हैं ओनली, ओनली दिस, इसके अलावा नहीं, क्या हराम है तुम पर, 4 चीजें ओनली, यानी आप समझ लें, फिर मैं आयत के साथ डेप्थ में जाती हूँ, इस्लाम में सिर्फ 4 चीजें हराम है, बाकी सब कुछ खाओ। अब पहले आप इन 4 चीजों को सुनने से खुद से सोचिए और पूछिए कि कि क्या मुश्किल है चार चीजों से रुकना। इतनी आपके पास दुनिया में लाखों चीजें मौजूद होंगी, राइट? और टेबल भरी हो, फुल से फुल भरी हो, ये लंबी टेबल भरी हो, कोई आपको कहता है जो मर्जी खाओ, लेकिन बस ये साइड की एक टेबल पे 4 डिशेस रखी हो, कहा जाए बस इसको नहीं खा सकते, क्या ये मुश्किल है? चले इसको थोड़ा सा आपके माजी के साथ, आपके बाप दादा के तरीकों पे चलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ भेजा जन्नत में, क्या कहा? कुलू वशरबू, सब कुछ खाओ, राहतन, खुले दिल से खाओ, वला तकरबा हाजिहि शजरा, बस इस दरख्त के करीब ना जाना। कौन सा था? हु केयर्स, बस था कोई। जन्नत में आदम के लिए कितनी चीजें हराम थी? एक। कितनी हलाल थी? सारी। शैतान ने क्या किया? उस एक को इतना खूबसूरत बना के दिखाया, ऐसा लगा यही सबसे खूबसूरत है। सेम यही काम शैतान जहां करता है। आदम के लिए जन्नत में एक हराम थी, शैतान ने उधर भी मुंह डलवा दिया। इस दुनिया में सिर्फ 4 चीजें अल्लाह ने हराम की हैं। आइए अब उसकी तफसील देखते हैं। बाकी जो कुछ है सब उसका बाई प्रोडक्ट है। और आप इस मिजाज को समझ गए तो आपको लगेगा इस्लाम इतना आसान मजहब है। क्या है? इन्नमा, बेशक, सिवाय इसके नहीं, कुछ भी कह लीजिए। हर्रमा, उसने हराम किया। किसने? अल्लाह ताला ने। किस पे? अलैकुम, तुम पर। कुम से मुराद यहाँ कौन होगा? मैं और आप मुसलमान। यानी जो ही बंदा मुसलमान होता है उसका एक खाता नया खुल जाता है। पहली जिंदगी तो थी, वो तो थी ही थी, अल्लाह ताला ने कर दी, लेकिन अब क्या है तुम पर? हराम चीजों में पहली चीज क्या है? अल मैता, लफ्ज देखिएगा, अल मैता, लफ्ज मैयत बोलते हैं उर्दू में, मुर्दा। अल मैता शरीयत में उस जानवर को कहते हैं जिसको जिबा करने से पहले ही मौत आ जाए। लिख ले, मैं आपको आज यहाँ वो मौजू समझा दूँ जो अमेरिका कनाडा में तो फेवरेट टॉपिक है लोगों का। यूरोप में मैंने लोगों को इतना क्यूरियस नहीं देखा इस पे, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ लीजिए इसको, इस्लाम ने क्या मिजाज दिया? जितने जानवर हैं दुनिया में फिर रहे हैं, खा पी सकते हो, कुछ हराम है उसकी लिस्ट आएगी बाद में। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट और मुर्गी, जो कुछ भी आम चीजें आप खाते हैं खा सकते हो, लेकिन इनको खाने का एक खास तरीका है। दो शर्तें हैं इस्लाम में। खाना, यानी चिकन को मिसाल लेते हैं, चिकन आप खा सकते हैं लेकिन उसको खाने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि जब चिकन को पकड़ा जाए यानी जिबा करने के लिए, तो उसको जब छुरी चलाई जाएगी उसकी गर्दन पे, तो बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहा जाएगा। क्या कहेंगे बोलिए आप लोग, क्यों? मैंने अपने एक छोटे से सेशन में इस पे बात की थी कि आपका पेन हो तो मैं यूज करना चाहता, तो मैं क्या कहती हूँ, मे आई टेक दिस प्लीज, इजाजत लूंगी ना आपसे। आपका पानी पड़ा हुआ है मैं पीना चाहती हूँ, मैं कहूंगी क्या मैं आपका पानी ले लूँ? जिस तरह हम इंसानों से उनकी चीजें लेने से पहले इजाजत मांगते हैं ना, जानवर, बकरियां, गाय, भैंसे, मुर्गियां किसकी हैं? अल्लाह से हम लेना चाहते हैं, तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर। अल्लाह जी आप बहुत बड़े हैं, आप सबसे बड़े हैं, क्या मैं इस मुर्गी को ले लूं? समझ आई बात? बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहना असल में अल्लाह ताला से इजाजत लेना है। इसके पीछे विस्डम है, ये आप कह लें इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। बड़ी ना समझी और गुस्ताखी होगी कि इंसानों से तो हम कुछ लें तो मैं प्लीज, एक्सक्यूज मी, पार्डन प्लीज और फुला फुला, और अल्लाह का जानवर पकड़े और झट से छुरी डाल दें। पहली वजह सबको समझ आ गई, कोई शुबा, कोई सवाल, क्लियर? चलिए दूसरी शर्त क्या है कि जानवर को जब जिबह किया जाता है ना, आप जो मेरे हाथ को देखें, जैसे ये देखें हमारी गर्दन है ना, इस गर्दन के अंदर बहुत सारी वेन्स गुजर रही हैं, आंखों, कान, दिल, बल्कि सारे जिस्म के साथ ये कंट्रोल होता है। इसके अंदर एक रग ऐसी होती है यहाँ पे जहाँ आप देखें कि जिसको रगे जिंदगी कहते हैं, वरीद कहते हैं, शहरक कहते हैं, ठीक है? जब ये कटती है ना तो फिर क्या होता है कि बंदे का दिमाग के साथ ताल्लुक टूट जाता है। जानवर के जिस्म के अंदर, गर्दन के अंदर बहुत सारी रगें होती हैं, लेकिन एक रग ऐसी होती है कि जब उसको कट लगा दे तो जानवर तड़पता है। तड़पने की वजह से उसके जिस्म के अंदर जितना भी खून होता है ना, खून खून क्या है उसके ऊपर आगे अलग बात आ रही है, उसको वहां देखेंगे। बस अभी इतना समझ लें कि खून हमारे जिस्म में ऐसे ही है जैसे गटर की पाइपों में गंदा पानी। सारे शहर की सफाई करते हैं ना, गटर का पानी उसमें आता है और आप उसको भगा देते हैं, बह जाता है तो साफ हो जाती हैं गलियां। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म में हर वक्त सेल्स टूटते हैं, सेल्स बनते हैं, कभी जख्म आता है, पस बनती है, हम खाना खाते हैं उसके अंदर जरासीम चले जाते हैं, वो सब कुछ जिस्म हमारा जो है ना वो खून में डाल देता है। खून सारा दिन जिस्म में यूं फिरता है, ये सफाई कर रहा है, जहां कोई गंदी चीज लेता है ना उसको उठा लेता है, उठा लेता है, उठाता है। ये जो हम औरतों में पीरियड्स होते हैं ना बुलूगत के बाद, ये भी असल में यही चीज है। जिस्म के अंदर पूरे महीने में इतनी ज्यादा चीजें जमा हो चुकी होती हैं, इतने पिगमेंट्स और गंदगी, कि अल्लाह ने एक नेचुरल सिलसिला बना दिया कि वो जिस्म से निकल जाता है तो औरतों का जिस्म नरम रहता है। मर्दों में चूंकि ये सिलसिला नहीं होता तो वो ही फिर जिस्म की जो गंदगी है वो उनकी मजबूती का सरिया बनती है। मर्द मजबूत होते हैं, जिस्म पे बाल आ जाते हैं, आवाज भारी होती है, उनके अंदर हमसे ज्यादा वजन उठाने की ताकत होती है। तो जिस्म के अंदर जो खून है ना वो गंदगी का कैरियर है। अब होता क्या है कि जब आप जानवर को ज़िबह करते हैं, एक तरीका क्या, पूरी गर्दन इकट्ठी काट दें, जिसको आज के दौर में बड़ा मारूफ लफ्ज़ बोलते हैं झटका, कोई भी पकड़े और जिसको आप कह लें कि मर्सी किलिंग या कुछ भी कर दे, होगा क्या कि जानवर के जिस्म में जो खून है ना वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, गर्दन अलग हो गई, जिस्म अलग हो गया, जानवर थोड़ी देर में ठंडा होगा। जितना खून जिस्म में था उसके अंदर जितने जरासीम थे वो सब गोश्त में मिक्सअप हो जाएंगे। बात वाजे। अब इस बात को सुन के आप जो मर्जी कहें कि हम चिकन केंटकी खा लें, हम फुलां का चिकन खाएं, हमें तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी, जो मर्जी करें, आपकी मर्जी, आप जाने, आपका काम जाने, हमारी बला से। लेकिन अल्लाह ने बता दिया, उसको पता है जिसने बनाया, कि जानवर को एकदम ना काटो, बल्कि क्या होता है उसकी ये गर्दन की सिर्फ एक कट लगाते हैं, खास जग होती है, काटने वालों को पता होता है, वो काटते हैं ना फिर जानवर को छोड़ते हैं। अब उससे क्या होता है कि दिमाग उसका काम कर रहा है, लेकिन जानवर मरा नहीं है पूरा, लेकिन उसके अंदर फीलिंग क्या आ रही होती है कि वो तड़पना शुरू होता है। जब वो तड़पता है ना तो उस रग के जरिए सारे जिस्म का खून बाहर निकल जाता है, और वो गंदा भारी खून पहले निकल जाता है, जो ही वो निकला जानवर अंदर से एक किस्म का क्लीन हुआ तो फिर आप उसको पूरा काट देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। ये है दूसरी शर्त। पहली शर्त बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर, ये क्या है, अल्लाह से परमिशन लेना। दूसरी क्या है, जानवर के जिस्म का गंदा खून निकालना है। जब ये निकल गया वो बिल्कुल ऐसे प्योर और क्लीन गोश्त है। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत अल-अनाम में आएगा, दमम मसफूहा का भी लफ्ज आता है, रगों में बहता हुआ खून हराम है क्योंकि उसमें गंदगी होती है। बाज दफा आप देखिए कोई गोश्त धो के आप रखते हैं उसके बाद थोड़ी देर फिर खून आ जाता है, ठीक है, तो वो पाक है क्योंकि उसमें गंदगी नहीं है। गंदा खून निकलना है वो गंदा खून हराम है। इसलिए फरमाया कि अल मईता, खुद से जानवर मरेगा तो उसका गंदा खून जिस्म ही रहेगा, जिबा नहीं किया ये नहीं खा सकते जो खुद से खाए। अब इस मईता की सारी डिटेल जो ना, ये सूरत मईता की शुरू की आयतों में हम पढ़ लेंगे, अल मईता तल मुनखनिक अल मौकूज़ा अल मुतरद्दिया नतीहत व मा कल सबू, क्योंकि जानवर के खुद ब खुद मरने की कई सूरतें हो सकती है ना, बुलंदी से गिरा मर गया, लाठी लगी मर गया, जानवर ने सींग मारा तो मर गया, शॉट लगा तो मर गया, तो वो जानवर जो इनमें से किसी सूरत में मर गया बीमारी में किसी तरह, वो नहीं खा सकते, पॉइजनस होता है उसका मीट। अब आज लोग कहते हैं क्या है, चिकन ही है ना, अमेरिका में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या हम रेगुलर स्टोर्स का मीट खा सकते हैं? ये ऐसे जैसे आज यहाँ रहते हुए कोई के सेंसबरी और टेस्को और फुला में जो मीट बिकता है हम खा सकते हैं, तो आपको जवाब मिल गया, खाना चाहते हैं तो खा लें गंदा खून। आप देख सकते हैं कि आज वेस्टर्न माहौल में कितनी बीमारियां, हमारे मुल्क गरीब ही सही लेकिन इतनी बीमारियां नहीं है जो यहाँ है, अंदर जरासीम की बीमारियां, किसी के एंजाइम्स की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, खाल लटकी हुई, मोटापा, वो इस तरह के मीट की वजह से होती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि मईता ना खाओ, खुद से मरा हुआ को ना खाओ। आप बस अभी इसी पे रहे, आपको इतनी बात समझ आ गई है ना, स्टिल आपको लगता है कि मईता खाना चाहिए, कोई दूसरा मीट नहीं मिलता, ना भी मिले तो क्या इंसान इतनी गंदी चीज खा सकता है? तो मुश्किल तो नहीं है ना इसे रुकना, ठीक है ना, हलाल तरीके से कटा हुआ ले लेते हैं। दूसरी चीज वह दम, खून, खून नहीं पी सकते आप किसी का, वजह आपने अभी सुन ली, क्यों बोला कि खून में गंदगी है। आप कहेंगे कोई खून पीता, पहले तो माएं पीती हैं, गुस्से में कहती मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, आप बताइए जरा, ये हद से बड़ी भी बात नहीं है, है? कत्ल कर दूंगी तुम्हें, जिबा कर दूंगी तुम्हें। बच्चे को भी पता करना कोई नहीं इस औरत ने कितने साल से कह रही है। मत बोले वो बातें मुझसे जो कर नहीं सकते, ली मत कुलू ना माला तफलून। ठीक है, कई कल्चर ऐसे हैं जहाँ खून पिया जाता है, वल्लाही नहीं पी सकते, खून हराम है। ठीक है, अभी इसके एक्सेप्शंस दो हैं, वो मैं आपको बाद में लिखाऊंगी ताकि आपका माइंड डिट्रैक्ट ना हो। ठीक है, पहली, अब किसी का खून पीने का मूड तो नहीं है ना, ज़रूरत भी नहीं है ना, तो ख़त्म हो गई। ये चीज़ ऐसी है ही नहीं जो हम पसंद करें, इंसान की तबीयत ही नहीं चाहती कि वो खून पिए, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलिए। वो निकल गया। तीसरी चीज़, वह लहमल खिंजीर, सुअर का गोश्त नहीं खा सकते। लहम कहते हैं अरबी में गोश्त को, मलहूम कहते हैं गोश्त की दुकान, बुचर शॉप। अगर आपको अल्लाह ताला अरब मुल्कों में ले जाए तो आप देखेंगे कि लिखा होगा जगह जगह मलहूम, लहम से गोश्त की दुकानें, यानी जहाँ पे गोश्त दिखता है। तो गोया के खिंजीर, खा नून जा रॉ इसका रूट होगा, खिंजीर का गोश्त भी नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते भाई? पहली बात, अल्लाह का हुक्म, सीधी सी बात है, मेरी चीज है। आप कहते हैं मैं ले लूँ, मैं कहती हूँ नहीं ले सकते, दैट्स इट। इतनी बातें हम आपको बता रहे हैं ना कि खून है और इस कैसे ज़िबा करें, ये सिर्फ हम इंसान की अकल को तसल्ली देने के लिए बात करते हैं। हमने इसलिए नहीं इसको छोड़ना कि जी ये इसलिए ये जहरीला है, हमने क्या सोच के छोड़ना है मैता को? अल्लाह का हुक्म, भाई मेरा रब नहीं चाहता। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मिसाल अच्छी नहीं लेकिन समझा देती हूँ कि जैसे आप देखिए कि शौहर और बीवी के ताल्लुक को अल्लाह ने माँ और बेटे में हराम किया ना, क्यों नहीं? अल्लाह का हुक्म, दैट्स इट। भाई बहन में वो ताल्लुक क्यों नहीं हो सकता जो शौहर बहन में है, शौहर और बीवी का? अल्लाह का हुक्म। तो मुसलमान होने का तकाजा क्या है कि हमने दीन का कोई हुक्म भी मानना है उसको अल्लाह का हुक्म मानना है, उसको अकल पे नहीं परखना। कल अकल कहते नहीं नहीं खून पाक होता है, खून अब साफ हो गया, अब ये कर लो तो आपको ऐसी चीज निकल आई है कि खून साफ रहता है तो खा लो, फिर भी नहीं खाना क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। ठीक है, बात हो रही है खिंजीर पे। देखिए पहली बात यह है कि खिंजीर भी अल्लाह ने पैदा किया और उसी ने मना किया, वो जिसको चाहे हलाल कर दे जिसको चाहे हराम करे उसकी मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला की एक सुन्नत याद रखे कि उसने अलल टप हमें किसी चीज़ से ऐसे ही नहीं कह दिया नहीं करना, बस मैंने कह दिया कबाज माए के बस आई टोल्ड यू, नहीं ये नहीं करता, अल्लाह ताला दलील भी देता है। खिंजीर जानवरों में एक अजीब सा जानवर है, पीछे हमने तफसील से बात की कि खाने पीने का इंसान की तबीयत पर असर होता है, हम जो चीज़ खाते हैं ना उसका मिजाज हमारे अंदर आ जाता है। खिंजीर जानवर के अंदर तिब्बी तौर पे, इखलाकी तौर पे और सेक्सुअली तौर पे ऐसी ऐसी आदत हैं कि जो लोग खिंजीर का गोश्त खाते हैं ना, ना चाहते हुए भी उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। मसलन कैसे, चंद बातें, मैं ज़्यादा नहीं बोलती इस पे इसलिए कि मुझे तो इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, लेकिन फिर भी हम सब की तसल्ली होने के लिए आप देखिए कि आज जाके मेडिकल की रोशनी में आप जाके खिंजीर के इनसाइड को अगर देखें ना तो हैरत होगी कि इंटरनली जो ह्यूमन बॉडी का अंदर इंटरनल है ना, दिल कहाँ फेफड़े किधर, बिल्कुल खिंजीर का भी वैसा है। होता क्या है कि जब हम खिंजीर का गोश्त खाएंगे, पिक का गोश्त खाएंगे, तो अगर खुदा ना खास्ता उस पिक को दिल की कोई बीमारी थी, डायरेक्ट वो बीमारी हमारे दिल पे आ जाएगी। अगर उसके गुर्दों में कोई बीमारी थी तो उसके गुर्दे आएंगे, यानी चूंकि इनसाइड बहुत ज़्यादा आपस में मिलती जुलती है, इसकी वजह से हमारे साथ इसका मामला बिल्कुल हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात, फिजिकली इसको ना खाने की वजह यह कि खिंजीर की जो स्किन होती है ना, इसमें पोर्स नहीं होते, 6 इंच, बल्कि एक बार जगह कहते हैं कि 6 से 7 इंच इसकी स्किन मोटी होती है। आप सोचिए 6 इंच, जब इतनी मोटी खाल होगी तो जिस्म में से जो गंदी फासिद मादे निकलने हैं पसीने की सूरत में, वो नहीं निकलते, नतीजा क्या होता है कि इसके जिस्म की गंदगी जो है इसके अंदर ही मिलती जाती है, पॉइजनस हो जाता है इसका मीट। फिर आप देखिए कि इसकी इतनी मोटी चर्बी होती है, लार्ड कहते हैं इसकी चर्बी को, फैट, पिग फैट जो होती है वो इंसान के फेफड़े और उसके दिल, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कह लें कि दिल में कोलेस्ट्रॉल भर देती है। जो लोग पिग का गोश्त खाते हैं वो आप देखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोटे होते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए कि इसके जिस्म के अंदर कुछ इस किस्म के सख्त किस्म के एंजाइम होते हैं कि जो इंसानी बॉडी डिजोल्व ही नहीं कर सकती। इसका गोश्त सख्त होता है, बदबूदार होता है, स्मेली होता है, इसकी स्मेल दूर करने के लिए उसको वो कुछ केमिकल से गुजारते हैं, फिर साफ होता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि अगर हैबिट्स के नाते से देखें, ये तो है ना फिजिकल इफेक्ट, हैबिट्स के एतबार से देखें तो पिग जो है ना ये गंदा जानवर है, गंदगी में रहता है, कीचड़ में लोटपोट होता है, अपना ही फुजला खा जाता है, जिस्म से जो गंदगी निकलती है दूसरे जानवरों का भी गंदगी खाता है, तो वो सारी इसके अंदर जाती है। इसके ब्लड में यूरिक एसिड जो है वो नहीं होता क्योंकि इसकी गंदगी सारी जिस्म में रहती है। सेक्सुअली देखें तो पिग होमोसेक्सुअल है, ये वाहत वो जानवर है जो मेल मेल से और फीमेल फीमेल से गंदगी करते हैं। पिग मेल जो है ना उसके अंदर गैरत नहीं होती, ये अपनी फीमेल से दूसरे पिग्स के साथ जिना करवाता है। ये वो मालिक अर्शे कायनात वाला मैं कह रहा है जिसने बनाया है। आज जब लोग इसके गोश्त में आए उससे आप देख लीजिए जो ये खाएंगे उनके अंदर आपको होमोसेक्सुअलिटी लेस्बियंस और फलाना अब कल्चर के नाम पे दिखने लग गया, पहले तो ये बुराइयां लगती थी। जो आपके पेट में जाएगा वही आपके बाहर आएगा। कहते हैं कालिम तो कहते थे तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम करते क्या हो। सच्ची जो बात है, तो अल्लाह ताला ने जब इसको मना, और इससे बहुत कुछ है, आप इसकी मैंने पिछले सालों में बहुत डिटेल्स बताई थी, अगर आप सुनना चाहें तो सुन लें, तो पिग का गोश्त अल्लाह ने हराम कर दिया। हाई कोलेस्ट्रोल, हैवी मीट होता है, और जो हराम है यहाँ लहमल खिंजीर है, तो हर चीज हराम है, उसकी चर्बी, उसके खोर, उसके कुछ। एक चीज जो रिसेंटली मुझे बताई गई, होपफुली दिल तो मानता है कि ठीक ही होगी, हमारी चीजें जो अमूमन लेदर की, आज देखिए कि जितनी महंगी चीजें होती हैं मोस्टली लेदर की होती हैं, तो मेरे पास एक सेलफोन कवर था, मैंने कभी सच्ची बात है ना सोचा ना, मैंने जिनसे लिया उनको भी नहीं पता होगा, तो मेरे हाथ में किसी ने देख के तो उसको जब खोला तो उन्होंने बताया कि इसकी जो अंदर की लेयर है ना ये पिक की स्किन है। तो मैंने कहा वो कैसे, तो फिर उन्होंने जिस रेफरेंस से बात की थी वो यही थी कि कोई ब्रदर है जो मतलब उनका काम ही लेदर की जैकेट्स का है, तो वो बताते हैं कि पिग की जो लेदर होती है ना उसकी पहचान क्या है कि उसके अंदर सुराख होते हैं, इसके बाल मोटे मोटे होते हैं, तो जब वो स्किन साफ करके बाल खींचते हैं ना तो इसकी स्किन के अंदर सुराख हो जाते हैं। तो फिर मैंने जब उस बात पे गौर करके देखा तो वाकई ऐसे ही था कि बाहर का लेदर ऐसे ही था नॉर्मल जैसे होता है लेकिन अंदर की लेयर है। और उन्होंने ये भी बताया कि पिक का लेदर सबसे सस्ता है, तो ये जो जूते बनाने वाले, पर्सेस बनाने वाले, और इसलिए मैं आप सबको ये जिक्र इसलिए मैंने कर दिया कि आप लोग भी केयरफुल रहा करें। इधर भी किसी ने एक दिन इशारा किया था कि जो साथी बाहर आते हैं तो उनकी एक किसी की जूती, जिसको फिर शौक होता है वो देखता भी है कि ऐसा ना हो, तो उन्होंने बताया कि किसी की जूती जो थी तो उसके ऊपर जो स्किन थी वो पिक की थी, तो मैंने तो फिर वो अपना फेंक दिया क्योंकि हमें नहीं पता होता ना। तो ये छोटी छोटी चीजें अब आपको पता चल सकती हैं, इसलिए कभी भी प्योर लेदर की कोई चीज ले, महंगे जूते, और जितनी महंगी दुकानों से लेते हैं उतनी ज्यादा खतरा होता है इसका, तो उनसे पूछ ले कि पिक का लेदर तो नहीं, और खुद अगर आप देखना चाहें तो। बहरहाल ये एक चीज मेरे पास थी जो मैंने आपको बता दी है, आप चेक कर लें बस। अब हम किसी एक ब्रांड के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते कि उसका क्या है, ना हमारा किसी को कोई लेट डाउन करना मकसद है, लेकिन कम अज कम आपको था कि नमाज ही नहीं होगी। असल बात तो यह है कि हम इबादत अपनी खराब करने वाले बनते हैं, अपने आप को इन चीजों से बचाए। अब इसमें हर चीज फिर इसकी हराम होगी जो भी चीज है, बहरहाल आगे चलते। फिर इसके बाद चौथी चीज ये है जो आपको अब समझनी है टैक्स के नाते में। तीन चीजों पे कोई एतराज है किसी को? अगर एतराज है तो अल्लाह से दुआ करें कि आपका एतराज दूर हो, ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह ही दूर कर सकता है, हम नहीं कर सकते। और इसके बाद भी अगर कोई कहे कि हमें फलां चेन का फूड अच्छा लगता है, क्योंकि अब दुख की बात है कि आज हम मुसलमान पिक का गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाते लेकिन मीट खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो शराब तो नहीं बेचते अपने स्टोर्स पे, पिक के सैंडविच बेच लेते हैं, उनकी डेलीज में ये वो मिलता है, तो फिर आपकी मर्जी है, केयरफुल रहने की जरूरत है, अल्लाह राजी का वो रिस्क दे सकता है। अब चौथी चीज है ना ये थोड़ी सी आपके समझने की, इसलिए इसके ऊपर आयत पे लफ्जों पे गौर कीजिएगा। चौथी चीज जो हराम है, वमा ओहिल्ला, और जो कोई पुकारा गया भी उस पर ली गैरिल्लाही, अल्लाह के सिवा किसी और का नाम। इस लफ्ज को मैं दो तीन मुख्तलिफ तरह से पढ़ के आपको दिखाती हूँ ताकि आपको इसका सारे एंगल समझ आ जाए। अगर एक तर्जमा इसका करें तो क्या होगा, और वो जानवर जिसको अल्लाह के नाम के सिवा हलाल किया जाए, वो हिल्ला का लफ्ज है ना आप यहाँ देख रहे हैं ना, हलाल करना पुकारना, ये वो हलाल नहीं है, हा वाला हल्ला या हुल्लू असल में लफ्ज क्या होता है? पुकारना। ये जो चांद होता है ना, पहली दूसरी तारीखों के चांद को हिलाल कहते हैं अरबी में, वो यही लफ्ज है। आगे भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि चांद देख के लोग पुकारने लगते हैं ना, वो चांद दिख गया, चांद दिख गया। ठीक है, तो इसमें लफ्ज असल में पुकारना है। एक इसका मानी क्या बनता है कि जिसको अल्लाह के नाम के सिवा पुकारा जाए, तो मानी क्या बनेगा कि ज़िबह करते वक्त बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर ना कहा जाए, यानी कुछ भी नहीं नाम लिया, किसी का भी नहीं लिया। एक इसका तर्जमा ये बनेगा। दूसरा क्या है, और जिसको पुकारा जाए ली गई रिल्ला, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम के लिए। बात वैसे इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। होता क्या था कि अरब लोग जब जानवरों को ज़िबह करते थे ना, तो बिस्मिल्लाह ही कहने की बजाय अपने बुतों का नाम लेते थे। जो बुतों के पुजारी थे वो बुतों का नाम लेते थे, और जो किसी बुजुर्ग या किसी बड़े को खुश करना चाहते थे वो उसके नाम पे, जैसे मिसाल है फलां पीर के नाम पे, फलां गौस के नाम पे, कुतुब के नाम पे, यानी अल्लाह की बजाय वो किसी बुत की खुशी के लिए उसको ज़िबह करते थे। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि नाम लिया जाए। वो क्या करते थे कि जिन जानवरों को इस तरह उन्होंने ज़िबह करना होता, उनको बुतों की दरगाहों पे ले जाते, बुजुर्गों की कब्रों पे ले जाते, और वहां जाके उनकी कब्रों पे ज़िबह करते और कहते कि हमने साहिबे कब्र की खुशी के लिए ये किया, हमने अपने साहिबे कब्र की खुशी के लिए ये किया है। तो इसको अल्लाह कहता है वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। इसको आप अपनी आसान जुबान में समझे तो ऐसे ही है कि ये फोन है मेरा और आप इजाजत इनसे ले रहे हैं, शुमाइला मैं ये फोन इनका यूज कर लूं, तो शुमाइला अगर आपको इजाजत दे भी देती हैं तो मैंने तो नहीं दी। बात वाज़ेह, चीज अल्लाह की है, आप किसी दूसरे बंदे के नाम पे उसकी खुशी के लिए करें। इसी से वो शिर्क के सारे बाब आपको समझ आ जाएंगे, जो आज गैरों को तो छोड़ दीजिए, हम मुसलमानों में भी मारूफ है। बकरा छतरा कब्रों पे ले जाना, वहां ज़िबा करना, मुहर्रम में फलां इमाम के नाम पे सबील लगाना, फलां के लिए लेके जाना, फलां के लिए करना, इस्लाम इसको जायज़ नहीं करार देता। वजह क्या है? देखिए, तकर्रुब का लफ्ज़ सुना होगा आपने, कुर्बत, कुर्बानी। अल्लाह ताला क्या चाहता है कि बंदा मोमिन के हर काम में तकर्रुब इलल्लाह हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। ठीक, जब बंदा किसी चीज़ के जरिए किसी दूसरे का कुर्ब हासिल करे तो शिर्क है, मेकिंग पार्टनर्स है, एसोसिएट बनाना है, अल्लाह ये पसंद नहीं करता। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमारे बड़े जो फौत हो गए, माँ बाप या बुजुर्ग, क्या हम उनकी तरफ से सदका नहीं कर सकते? देखिए, बाल से बारीक फर्क है शिर्क और तौहीद में। लोग कहते हैं ना जमीन आसमान का फर्क है तौहीद और शिर्क में, बाल बराबर फर्क है। शैतान इतने खुफिया रस्तों से शिर्क करवाता है कि अल्लाह की पनाह। अल्लाह के नबी का एक वाक्य आपको सुना देती हूँ कि एक शख्स आपके पास आए, कह मुसलमान हो चुके थे, पहले कुफर पे थे, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जाहिलियत के दिनों में एक मन्नत मानी थी कि मेरा फलां काम अगर हो गया तो बवाना, एक वादी का नाम है, यानी जवैली अराउंड मक्का, के वहां जाकर एक ऊंट को ज़िबा करूंगा, फिर मेरा अल्लाह ने वो काम कर दिया, तो मैंने वो अपनी मन्नत पूरी नहीं की, तो क्या अब मैं उस वादी में जाकर अपना ऊंट ज़िबा कर दूं? अब ये उसका सवाल समझ गए, क्लियर सवाल है कि बस कहीं दूर जाके ज़िबा करूं, जैसे हम लंदन में और कोई कह दे मैं मन्नत मानता हूँ कि मैं मैनचेस्टर में जाकर एक ऊंट ज़िबा करूंगा, ऐसे ही आपको पता ना कि जब लोग मुश्किल में फंसे होते हैं तो उनका ख्याल होता है कि मुश्किल काम करे ताकि शायद अल्लाह ताला मान जाए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये बताओ कि तुमने बवाना ही वादी क्यों कहा? कैसे अल्लाह के नबी, दुखी था, परेशान था, मैंने कहा चलो दूर जाके करते हैं। अच्छा, फिर आपने पूछा ये बताओ कि क्या वहां कोई कब्र है जिसकी कुर्बत की वजह से? कहा नहीं अल्लाह के नबी, कोई कब्र नहीं है। कहा अच्छा, ये बताओ क्या कोई वहां दरख्त है जिसको मुतबर समझते हुए लोग उसकी पूजा करते हैं? कहा नहीं। आपने लंबे चौड़े सवाल की, क्या वहां कोई कुएं है? यानी जो चीजें अमूमन शिर्क के आसार होते हैं अल्लाह ताला की बजाय दूसरों को पूछते हैं, जब उस सहाबी ने पूरा यकीन दिलाया कि अल्लाह के नबी ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से मैंने कहा कि वहां जाके मन्नत मानूंगा, तो फिर आपने कहा कि जाओ फिर अपनी मन्नत को पूरा करो। तो यहां से आप समझिए कि अगर आपने किसी बुजुर्ग को फायदा देना है, मिसाल है लोग ये धोखा देते हैं, कहते नहीं नहीं हम इन बुजुर्गों की तरफ से सदका देते हैं, तो जानवर को अगर जिबा करना है तो आप घर बैठ के कर दें, किसी के भी नाम पे कर दें। जैसे अभी देखिए कि ईद उल अदहा गुजरी ना, कुर्बानियों का मौसम था, आपका दिल चाहता है कि आप अपने माँ बाप की तरफ से कुर्बानी करें, आपने कर दी। किसी की तरफ से कर सकते हैं, जिंदा मुर्दा, ये ऐसे ही कि जैसे अब हम यहाँ खाना खुलता है तो हम एक दूसरे के लिए खाना नहीं लेते, खुशी है ना। आपको मैंने खिला दिया, आपने मुझे खिला दिया, ये खाने की बात हो गई ना। इसी तरह जब कोई फौत हो जाता है तो हम कोई नेकी जो जिंदगी में उसके साथ करते हैं तो उसके बाद कर सकते हैं। आप किसी को कुछ देते, मैं कहती नहीं मैं दे देती हूँ, मैंने आपकी तरफ से पैसे दे दिए, सदका हो गया ना। तो जब कोई मर जाता है, मरने वाले की तरफ से आप सदका दे सकते हैं। आप अपने चचा खालू फूफा मामू जो फौत हो चुके हैं माँ बाप, उनकी तरफ से जितने मर्जी सदके दें। आप खाना खिलाते हैं, आप किसी की तरफ से खिला दें कि उसको सवाब हो। फर्क कितना है, एक तो किसी की तरफ से खिलाना कि उसको सवाब हो, और एक है किसी को खुश करना कि ये बाबा जी खुश हो जाए ताकि मेरा बना बिगड़ा हुआ काम रुक जाए, ये शिर्क है। बात वैसे तो ये चीज है, ये चार चीजें इस्लाम ने मना की। बताइए मुश्किल शरीयत है क्या साथ, आसान है ना। फिर भी लोग आप देखिए कि इन चीजों के बारे में उलझे तो फिर ना शुक्री की हद है कि नहीं है।